ओम शांति। आप सभी इस ज्ञान सरोवर की भूमि में आए हैं, यूं समझें कि परमात्मा की गोद में आए हैं, परमात्मा पालना लेने के लिए। तो आज के इस मेडिटेशन शिविर के प्रथम सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि आज का हमारा सत्र है स्वयं की खोज, स्वयं की पहचान, अपने सत्य स्वरूप की पहचान। यूं तो आज विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है, वो हम सब जानते हैं। तो आसमान में उड़ना भी सीख गए हैं, तो सागर में गहराई तक जाना सीख गए हैं। क्या क्या रिसर्च हो गई है, कहां महीनों में दूरियां तय होती थी और आज घंटों में ही पूरी हो जाती हैं। तो इतना विज्ञान प्रगति पर है, आज हर पॉकेट में मोबाइल है और उस मोबाइल से हम पूरे विश्व का दर्शन कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? घरों में भी देखो तो इतने सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हो गए हैं। आप देखेंगे तो कहेंगे बहुत प्रगति हुई है, लेकिन जहां एक और प्रगति हुई है तो दूसरी तरफ तनाव भी बढ़ा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। उसका प्रमाण क्या है? हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, फार्मेसिस्ट बढ़ रहे हैं। तो अगर सुख सुविधा के साधन बढ़े हैं तो हम सुखी होने चाहिए ना, या नहीं होने चाहिए? लेकिन हो अपोजिट ही रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो वो कमी क्या है कि हम सब कुछ तो जान गए हैं लेकिन स्वयं को ही नहीं जान पाए। आज भी मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं तो उत्तर क्या आता है? मेरा ये नाम है। या अपनी कास्ट साथ में लगा करके बताएंगे, और होगा ज्यादा तो अपना प्रोफेशनल नेम बताएंगे, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। भाई ये तो पढ़ाई पढ़ने के बाद हमको ये प्रोफेशनल नेम मिला है, उससे पहले भी हमारा कुछ अस्तित्व है या नहीं है? है? हाँ? कहेंगे हम पहले ये थे, नाम ये था, ये। लेकिन नाम भी तो नामकरण होने के बाद रखा गया, उससे पहले आप कौन हैं? या यूं कहें कि जीवन पर्यंत हम दो शब्दों के बीच में खेल खेलते हैं, वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। आज हमें मेरे की सारी जानकारी है, मेरी जमीन है, मेरा प्लॉट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस है, हाँ? मेरा मकान है, मेरी दुकान है, और पर्सनल चीजों के लिए भी क्या कहते हैं, ये मेरी शॉल है, क्या कहेंगे, ये मेरी अटैची है। अभी आप आए होंगे तो ये अटैची मेरी है, हाँ? और शरीर के प्रत्येक अंग के लिए भी शब्द क्या यूज होता है, मेरा। कहीं पेन हो, दर्द हो, तकलीफ हो तो भी मेरा। मेरे सर में दर्द है, मेरे पांव में दर्द है, मेरा हाथ आज चल नहीं रहा है, तो ये मेरा है तो मैं कौन हूं? कभी सोचा आपने?
कि ये मैं और मेरा, क्योंकि ये लेसन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इस बात की जानकारी जब हमें हो जाती है तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में हम पहले सोचते हैं मुझे फायदा क्या होगा, ये हम क्यों करें, ये स्पिरिचुअलिटी को आध्यात्मिकता को क्यों सुने, क्योंकि आज का यंग यूथ क्या कहता है, पढ़ाई लिखाई करो, अपना जॉब करो, अर्न करो, सब कुछ करो, ये सब चीजों की क्या जरूरत है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जरूरत है या नहीं है? है हा? एक छोटी सी बात, एक छोटा बच्चा है, प्राइमरी स्कूल में है, तो उसका टारगेट है मुझे प्राइमरी स्कूल पास आउट करना है। सीनियर सेकेंडरी में गया तो उसको टारगेट है मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे मेरा कैरियर बनना है। कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है फिर वो किसी न किसी लाइन में चला जाता है, फिर वो भी सक्सेस मिल गई, अच्छी पोस्ट अच्छे औहदे पर पहुंच गया, अच्छी सैलरी का पैकेज भी मिल गया, और जीवन में तनाव है, जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, चिंता है, भय है, और उस चिंता के कारण बहुत सारी डिजीजेस से इन्वॉल्व हो जाता है। बीपी बढ़ गया, शुगर हो गई, हार्ट पे असर आने लगा, पेप्टिक अल्सर हो गया, या और कोई बीमारी हो, फिर जितना कमाया था ना वो सारा का सारा कहां पैकेज में चला जाता है। नहीं होता तो कईयों को तो अपनी प्रॉपर्टी तक भी बेचनी पड़ती है, अगर कैंसर जैसी डिजीज और इतने महंगा इलाज। तो इसीलिए आज के वर्तमान युग में इस स्पिरिचुअलिटी की बहुत 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 आवश्यकता है। इसीलिए आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप इस ज्ञान सरोवर के परिसर में पहुंच करके ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। हैं भाग्यशाली? जरा अपना हाथ सीधा यूं कीजिए, पीछे ले जाइए और जरा थपथपा दीजिए अपनी पीठ। वाह मेरा भाग्य, बोलिए वाह मैं आत्मा, वाह मेरा भाग्य। आप सोचिए इस सेशन से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। आपकी चिंता दूर होगी, टेंशन दूर होगी। जो हम आत्माएं, हम मनुष्य, इन कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, देखना नहीं चाहते देख लेते हैं, सुनना नहीं चाहते सुन लेते हैं, गुस्सा करना नहीं चाहते पर क्या कहते हैं कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए हम इंद्रियों के ऊपर भी इस स्पिरिचुअलिटी के आधार से विजय प्राप्त करते हैं। इस लेसन से हम मृत्यु को भी जीत लेते हैं, मृत्यु की भी चिंता या भय नहीं रहता है। तो चलते हैं। तो आज मैं बता रही थी कि मैं कौन, एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार हथौड़े और चाबी में आपस में डिस्कशन हो गई। तो हथौड़ा चाबी से कहने लगा, मैंने ताले पे बहुत बहुत वार किया लेकिन वो खुला नहीं। तो चाबी क्या बोली, क्या बोली होगी, मैं ताले के भीतर गई, घुमाया और खजाना पाया। तो आज दिन तक हम जो बाह्य साधनों को अपना रहे थे सुख शांति के लिए, उससे हम बाहर से वार कर रहे थे, लेकिन आज आप भीतर जाएंगे, पॉजिटिव साइड में अपने को घुमाएंगे, तो अंदर के खजाने सब निकल निकल करके बाहर आएंगे। लेकिन चाबी लगाना जरूरी है। तो मैं और मेरा, समझ गए? मेरा ये शरीर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे संबंधी वस्तु, वैभव, प्रॉपर्टी, संबंध और शरीर के प्रत्येक अंग के लिए शब्द यूज होता है मेरा। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं इसकी मालिक हूं। ये मेरा है तो आप कहते भी हो ना, ये मेरी शॉल है, तो आप क्या हो? मालिक हो ना। हाँ, तो शरीर और आत्मा दो चीजें हुई, हुई या नहीं हुई? हुई। इसीलिए शरीर को रथ कहा गया है और आत्मा को रथी कहा गया है। शरीर को इंस्ट्रूमेंट कहा गया है और आत्मा को पावर कहा गया है। बिना पावर के आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट चल सकते हैं? चल सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हों आपके घर में, टीवी भी है, फ्रिज भी है, प्रेस भी है, ओवन भी है, सब कुछ है, लेकिन एक लाइट चली गई। चलेंगे सब साधन? नहीं। तो समझ आई मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, ये चित्र में सभी देख रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक हड्डी मांस का शरीर दिखाया है जो पांच तत्वों के मेल से बना है। सबको मालूम है कौन कौन से तत्व हैं? बोले जरे। बहुत अच्छा, सभी को मालूम है। और अगर इस शरीर में वो चेतना शक्ति नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू है? नहीं है। और अगर वो चेतना शक्ति है तो जीव प्लस आत्मा, तो क्या बन गया? जीव आत्मा। आत्मा है इस शरीर में तो आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और आत्मा चली जाए तो सब क्या कहते? कितनी देर में ले जाओगे जी? यही कहते, यही कहते, कितनी देर में ले जाओ? अब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, तत्व तत्वों में विलीन हो जाएंगे, चाहे जलाओ चाहे दफनाओ। तो अब शरीर के बारे में आपने बताया पांच तत्वों के मेल से बना है, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली चेतना शक्ति है वो क्या चीज है? जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट भी खोज नहीं पाए, वो आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, सोल कहो, एनर्जी कहो, पावर कहो, वो है क्या चीज? तो जैसे शरीर पांच तत्वों के मेल से बना है, उसी तरह से आत्मा तीन शक्तियों का कॉम्बिनेशन है। वो तीन शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य क्या है? सोचना। कहते हैं एक बारी एक सम्राट था, वो बहुत परेशान रहता था, बहुत चिंता, बहुत फिकर, बहुत परेशानी में रहता था। तो एक दिन उनके शहर में एक महात्मा जी आए और वो महात्मा जी से मिले, कहा महात्मा जी मुझे बहुत चिंता है, इतनी चिंता है कि मुझे कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती है, मुझे कोई उपाय बताइए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप कल सुबह आ जाइएगा प्रातः अमृत वेले 4 बजे और एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है अपने मन को साथ लाइएगा। राजन ने कहा ठीक है। घर जैसे ही पहुंचे विचार चला, मन को साथ लाइएगा, मन को साथ लाइएगा। ये मन क्या है? आपने तो फटाफट बोल दिया मन बुद्धि संस्कार, हा? तो उनको पता नहीं था कि मन क्या चीज है, मन को कैसे ले जाना है, कहां से ले जाना है, साथ लेके जाना है। सोचते सोचते रात को फिर नींद गायब। इतने में सुबह अमृत वेला हो गया, पहुंचे महात्मा जी के पास। महात्मा जी आसन लगाए बैठे थे और महात्मा जी ने कहा उनको आइए सिंहासन पर बैठिए। उनको भी आसन पर बिठाया, फिर पूछा मन को साथ लाए हो? कहा यही तो मैं सोच रहा था कि वो मन को कैसे लाना होता है, मन तो कोई अलग चीज नहीं दिखाई दी मुझे। आप सभी मन को लाए हो? कौन कौन लाए अपने मन को यहां पे? ऊंचा हाथ खड़ा करो जरा। सभी लाए हैं, अर्थात फुल कंसंट्रेशन से सुनना है। सुनेंगे सभी? सुन रहे हैं? हाँ? तो मन अर्थात विचार शक्ति का नाम है। मन सदैव कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया मन को? मन सदैव कुछ ना कुछ सोचता रहता। जरा खाली बैठ करके देखो, जब बिजी है तो पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा सा खाली होकर के बैठो। और मन की विशेषता है, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पीछे तक जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है। मन सदैव कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी पराई बातें, कभी पुरानी बातें, कभी फ्यूचर के लिए जितना सोचना चाहिए उससे भी ज्यादा सोचता रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं, ज्यादा ख्याली पुलाव ना बनाया करो। और पुरानी बातें ज्यादा सोचता है तो भी क्या कहते हैं, गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? पुरानी बातें हिस्ट्री की सिर्फ लेसन ले लो, जैसे हम हिस्ट्री से लेसन लेते हैं। फ्यूचर के लिए प्लानिंग उतनी करनी है जितनी आवश्यकता है, अदरवाइज सब वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारा मन 30,000 से 50,000 विचार रोज उत्पन्न करता है। कितनी प्रोडक्शन है हमारे मन की? 30,000 to 50,000 पर डे। हम तो कभी कभी स्कूलों में प्रोग्राम कराते हैं बच्चों को, तो उनको एक्सरसाइज कराते हैं इसी पे, कॉपी पेन निकालो, एक मिनट का टाइम देते हैं, उसमें जितने आपके थॉट्स हैं उनको लिखवाते हैं। फिर हम कहते हैं एक मिनट में आपने दो काम किया, एक सोचने का और एक लिखने का, और अगर लिखने का काम ना हो तो ये सोच डबल हो। तो 30,000 to 50,000 थॉट्स नॉर्मली चलते हैं हमारे मन में। उसमें भी चार प्रकार के विचार, ऐसे तो 8 types of thoughts हैं, लेकिन चार प्रकार के विचार बहुत कॉमन चलते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड नेसेसरी थॉट्स। अच्छे विचार, बुरे विचार, आवश्यक विचार और व्यर्थ के विचार, ये चार प्रकार के विचार जनरली हमारे मन में चलते ही रहते, रेगुलर चलते रहते हैं। अब मन का काम है विचार करना। अब उसके बाद आता है बुद्धि का रोल। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है, डिसीजन देती है। एक तो बुद्धि विवेक शक्ति का नाम है, निर्णय देती है, डिसीजन पावर है उसके पास। इसीलिए बच्चों के लिए भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसको अच्छी बुद्धि देना। क्या कहते हैं? सबको सन्मति दे भगवान। अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छा निर्णय दे पाएंगे, और अच्छा निर्णय माना अच्छे कर्म। तो बुद्धि का एक काम है निर्णय देना, डिसीजन पावर, और बुद्धि का दूसरा भी एक काम है, वो है विजुलाइज करना। अभी अभी आप यहां बैठे हैं, मैं आपको कहती हूं आपके घर में एक फ्रिज है, उस फ्रिज में पीले पीले रंग के नींबू रखे हैं। अब नींबू रखा है, उसको निकाल लीजिए, चाकू ले लीजिए, काट लीजिए और उसका एक ड्रॉप अपने जीभ पे डाल लीजिए। किस किस की बुद्धि गई वहां पर अपने घर में? नींबू को किस किस ने देखा? देखा देखा, देखो यहां बैठे बैठे, आप तो यहां बैठे हैं, देख तो आप यहां पे रहे हैं। इसलिए बुद्धि को चक्षु भी कहा गया है, दिव्य चक्षु है। इसलिए कोई बात हमें तुरंत समझ नहीं आती, थोड़े समय के बाद समझ आती है तो कहते हैं ओ आई सी। क्या कहते हैं? ओ आई सी, अब मुझे समझ आई, मना अब मुझे दिखाई दिया है, समझ आ गई है। तो बुद्धि का काम निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति और विजुलाइजेशन पावर। अब बुद्धि ने निर्णय दे दिया, निर्णय देने के बाद क्या होता है? हम कर्म करते हैं। अभी आप लोग यहां ज्ञान सरोवर में आए हैं, हो सकता है घर में आपने पहले प्लानिंग की हो, मन में विचार चलाओ ये सब लोग भी जा रहे हैं मैं भी जाऊं। फिर एक बात को बुद्धि ने कहा, नहीं नहीं ये भी तो काम पड़ा है, ये भी तो काम पड़ा है, जाएं के नहीं जाएं, जाएं के नहीं जाएं। फिर कहते नहीं नहीं सब जा रहे हैं, मौका मिला है अभी चले जाते हैं, डिसीजन दे दिया बुद्धि ने। फिर क्या किया? एक्शन में आ गए, कर्म में आ गए और प्लानिंग, अटैची लगाने की, टिकट लेने की, सब प्लानिंग हो गई ना, तो कर्म में आ गए, एक्शन में आ गए। और कोई भी कर्म हम बार बार करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। उसको ही आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहा जाता है। जो काम बार 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 रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं तो क्या बन जाता है? संस्कार, नेचर, आदत, हैबिट। अब संस्कार भी देखे जाएं तो बहुत तरह के हैं। हम जन्म लेते हैं, हमारे घर में मान लो 3-4 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, 3-4 बच्चे हैं। एक बच्चे का संस्कार है वो किसी को कुछ भी चीज दे देता है, एक बच्चे का संस्कार है वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है। होता है ऐसे? तो ये संस्कार कहां से आए, ये अलग अलग संस्कार कहां से आए? कहते हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है, फिर भी इस बच्चे का संस्कार पता नहीं, कोई क्रोध के संस्कार वाला, कहते गुस्सा ही करता है, रोने के संस्कार वाला। तो क्या कहा जाए इसको? पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा साथ लेकर के आती है। किसी बच्चे को खिलौना दो वो बार बार तोड़ता है फिर जोड़ता है, फिर हमारे मुख से ये पिछले जन्म में कोई इंजीनियर तो नहीं रहा, कहते ऐसा। किसी को शौक है बच्चे को, मुझे ये बंदूक ही लेनी है, मुझे और कोई खिलौना नहीं चाहिए, और कहता है मैं इस बंदूक से मार दूंगा, तो हम क्या, पिछले जन्म में कोई मिलिट्री में था क्या? तो पूर्व जन्म के कोई कोई बच्चों के संस्कार जन्मते ही पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, कहते हमारे घर में कोई नहीं करता, पता नहीं ये कहां से थाली सजा के बैठ जाते। तो ये संस्कार कौन से? हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो आत्मा कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के आती है। पिछले जन्म का देह का संस्कार होता है और वो आत्मा संस्कार सूक्ष्म रूप में साथ लेकर के आती है। फिर इस घर परिवार में जहां हम जन्म लेते हैं उस घर परिवार के भी संस्कार हमें मिलते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? खानदानी संस्कार। इनके खानदान में ही ऐसा है, कह देते हैं या नहीं? पहले के जमाने में देखो जब सगाई करने जाते थे तो कोई लड़का लड़की को दिखाते थोड़े ही थे, आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे, दिखाया नहीं होगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग जाकर के खानदान देख करके आते थे कि खानदान कैसा है। अगर खानदान अच्छा है तो उस घर के बच्चे भी अच्छे ही होंगे, डेफिनेटली। तो वो खानदानी संस्कार, या जब हम थोड़ी बड़ी उम्र में आते हैं तो हमें वो बचपन वाले माँ बाप वाले संस्कार, या मेरी माँ ऐसा किया करती थी, तो कौन से संस्कार? खानदान के संस्कार। फिर अगले संस्कार आते हैं जिस संग में हम रहते हैं, इसीलिए हम कहते कोई भी बच्चा चेन ड्रंकर्ड पैदा नहीं होता है, चेन स्मोकर पैदा नहीं होता है। उनसे पूछा जाए कि आपको ये इल्लत कैसे लग गई, तो क्या कहते हैं? बस संगत में बैठे बैठे ऐसे ही लग गई। एक अच्छे स्कूल में बच्चे को पेरेंट्स बिठाते हैं तो थोड़े दिन बाद चेक करने के लिए जाते हैं कि बच्चा कौन से बच्चे के साथ बैठता है, क्योंकि अगर बैक बेंच पे बैठेगा, खेलने वाले बच्चे के साथ बैठेगा तो खेलने का ही सीख करके आएगा, गाली देने वाले के साथ बैठेगा तो क्या सीख करके आएगा। इसीलिए क्या कहते हैं? संग का रंग लगता है, इस बच्चे को कहां बिठाओ, टीचर को बोल के आते हैं इसको इसके साथ मत बिठाओ। फिर एक संस्कार है जो हमारे अनादि संस्कार हैं, कौन से? जो हम सबको चाहिए, प्रेम चाहिए। किस किस को चाहिए प्रेम? चाहिए किस किस को चाहिए? हाँ अच्छा, शांति चाहिए, मॉल में मिलेगी कि 100 ग्राम शांति ले ले, हाँ 500,000 रुपए दे दे मॉल से ले आए, नहीं मिलेगी। शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, सुख के संस्कार, ये हमारे संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार हैं, अनादि संस्कार हैं। और हमारे अंदर ये सब संस्कार थे, लेकिन आज लुप्त हो गए हैं। और फिर से हमें वो इच्छा उत्पन्न होती है, घर में प्यार प्रेम से रहे ना, शांति से रहे ना, सब कुछ तो है। तो इन्हीं संस्कारों को डेवलप करने के लिए ये आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और इसको भी कंटिन्यू करने के लिए वो चाहिए दृढ़ता के संस्कार। कौन से संस्कार चाहिए? दृढ़ता के। ऐसा नहीं कि आप यहां पे ये मेडिटेशन का कोर्स करें और घर जाएं और फिर घर में बैठ जाएं। नहीं, जैसे बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, इसी तरह से हमें भी रेगुलर ये स्टडी चाहिए। अगर हम सुख शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें भी रेगुलर बेसिस पे ये सब कुछ चाहिए। तो आत्मा क्या है? आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। तो आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक है, परंतु फिर भी आत्मा चैतन्य होने के कारण मालिक है। आत्मा मालिक है, शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती हूं धारण कर। शरीर नहीं कहता मैं एक आत्मा छोड़ के दूसरा धारण कर। तो आत्मा का स्वरूप कैसा होगा? कैसा होगा? देखिए, आत्मा जब शरीर से जाती है या जब शरीर में प्रवेश करती है, गर्म, किसी को पता नहीं चलता अर्थात अति सूक्ष्म है। भले कोई कोई कहते हैं हमने विजुलाइज किया या ऐसा किया, लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन रियलाइज करना है। रियलाइज माना रियल आईज से देखना है। रियल आई कौन सी है? बुद्धि रूपी नेत्र से अनुभव करना है। आत्मा दिखाई नहीं देती है। हम कहें किसी की आत्मा को नहीं, इन चरम चक्षुओं से ये चरम शरीर दिखाई देता है, भौतिक शरीर दिखाई देता है, लेकिन आत्मा अनुभव करने। अभी आप और हम बैठे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, अगर सपोज मेरी आत्मा निकल जाए तो आप जाते हुए नहीं देखेंगे, सिम्टम से अनुभव करेंगे। एक डॉक्टर को भी बुलाएंगे तो वो भी क्या कहेगा? इनका प्यूपिल डायलेट हो गया है, हाँ, इनके पल्स रेट नहीं है, इनकी हार्ट बीट नहीं है, इनका ये नहीं है, तो डिक्लेयर कर। उसने भी रियलाइज किया, अनुभव किया ना अपने ज्ञान के आधार से। आत्मा को जाते हुए नहीं देखा, तो आत्मा को रियलाइज कर सकते। और आत्मा भी जब तक इस शरीर में बैठी है हर चीज को रियलाइज करती है। क्या कहती है? ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, ऐसा ही कहते हैं ना। कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा निकल जाए शरीर अनुभव कर सकता है? देखिए आप छोटा सा एग्जांपल, आपकी ये उंगली एक गरम तवे पर लग जाए रोटी बनाते हुए और थोड़ा सा फफोला हो गया, तो आप सबको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मेरे को बहुत पेन हो रहा है, आज मेरा हाथ जल गया, जरा सा हाथ। और इसी शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, इसी शरीर पर 9 मण लकड़ी रख करके जला करके आते, कोई नहीं कहता मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि महसूस करने वाली चली गई ना। इसी तरह से आप कभी फ्रिज साफ करते हैं, बर्फ से, बर्फ है, ठंडा हो जाता है हाथ, क्या कहते हैं, मेरे हाथ सुन्न हो गए, ठंडे हो गए। और इसी शरीर से आत्मा चली जाती है, यही गर्मी का मौसम हो, इसको बर्फ की सिल्लियों पर रखते हैं, कोई नहीं कहता मुझे इतनी ठंडी लग रही है, कोई कहते है? कोई नहीं कहते, क्योंकि अनुभव करने वाली चली गई। तो सर्दी है, गर्मी है, मुझे दुख दिया, मुझे सुख दिया, मुझे हाँ ऐसी भी, तो ये सब कौन अनुभव करती है? आत्मा। तो मैं कौन हूं? आत्मा। अब आत्मा शरीर में कहां विराजमान है? अब आत्मा शरीर में कहां विराजमान है? कभी सुख दुख की बात होती है तो ये हाथ कहां जाता है? मेरे नसीब में। हा? कोई भविष्यवक्ता आ जाए और कहे आपका मस्तक ऐसे चमक रहा है, आपके भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, और हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो भी कहां लगाते हैं? हा? कोई हाथ पे लगा ले, पैर पे लगा ले, लगाएंगे क्या? लगाएंगे मस्तक के बीच में? क्यों लगाते हैं? क्योंकि आत्मा का इस शरीर में निवास जो है भ्रकुटी के बीच में, जहां हम सब बिंदी लगाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर मैचिंग बिंदी, तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक के बीच में। उसका एक रीजन और भी है, आत्मा ड्राइवर है, तो ड्राइवर हमेशा कहां बैठता है? पीछे की सीट में गाड़ी में या फ्रंट सीट पे? फ्रंट में भी उसकी फिक्स है सीट, ऐसे ही नहीं कि दो सीटें हैं इधर ड्राइवर बैठ जाए। हाँ लेफ्ट ड्राइविंग है तो अलग बात है, बाकी ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा सिस्टम वहां पर है, क्लच है, ब्रेक है, स्टेयरिंग है, एक्सेलेटर है, सब कुछ है ना। तो इसी तरह से आत्मा भी, ये बाहर में तो हमने यहां कह दिया, लेकिन अंदर ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास, वहां पर आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट विराजमान है और पूरे बॉडी को चलाती है, पूरे बॉडी को चलाती है। और क्यों यहां विराजमान है? क्योंकि पूरा सिस्टम उसका भी यहां पर है, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, टेस्ट की शक्ति, सुनने की शक्ति और सोचने की शक्ति, सारी पावर्स कहां है? बाकी हाथ पांव तो पहिए हैं और पेट पेट्रोल की टंकी है ना? हा? उसके बगैर तो चलेंगे नहीं ना गाड़ी। हा? तो इसीलिए आत्मा मस्तक के बीच विराजमान है, लेकिन यहां विराजमान होते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी, फिर भी क्या कहते हैं लोग, ये दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आज नहीं तो कल यहां से जाना है। जाना है नहीं जाना है? जाना है। फिर हम कहां से आए हैं, कहां जाना है हमको? तो इसमें ये दिखाया है कि आत्मा का ओरिजिनल घर, हाँ ये तीन लोक दिखाए हैं, नीचे है साकार मनुष्य लोक, जहां पे हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मां के गर्भ से ये शरीर धारण किया, और यहां इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर है अपना ओरिजिनल घर। कैसा? वो रेड ऑरेंज गोल्डन कलर के प्रकाश का आकाश है, जैसे नीला आकाश है ऐसे ही उसमें तीन कलर मिक्स है, रेड गोल्डन ऑरेंज कलर मिक्स है, तो वो स्व प्रकाशित देश है। और वहां पे हम आत्माएं कैसे रहती हैं? ज्योति बिंदु स्वरूप, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती हैं। क्योंकि आप ये मेडिटेशन सीखने के लिए बैठे हैं, तो मेडिटेशन में ये लेसन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप ध्यान कहाँ लगाएंगे? आपको ध्यान लगाना है, हा? तो साधक का भी पता होना चाहिए और साधक ने कहाँ जाना है ध्यान लगाने, तो वहां का भी परिचय होना चाहिए। तो वो हम आत्माओं का असली घर है। इसीलिए घर में भी किसी बहन भाई का मान लो कुछ झगड़ा हो जाता है, कुछ डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो क्या कहते हैं? ऐसा झापड़ दूंगा, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, क्या कहते हैं? या कोई ज्यादा डिमांड करते हैं बच्चे, तो कहते तू कोई ऊपर से उतरा है क्या, कहते ऐसा है? तो हम उतरे भी ऊपर से हैं और जाना भी हमें कहाँ है? ऊपर जाना है, हा? इस सृष्टि रंगमंच पर हम आए हैं अपना रोल प्ले करने, अपना पार्ट प्ले करने। तो कहाँ से आए हैं? उस ब्रह्मलोक से, शांति के देश, शांति धाम से, या उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो वहां से, परम धाम से, हम यहाँ पे इस सृष्टि रंगमंच पर जब प्रथम बार आए थे, तो कैसी उतरी होगी आत्मा? सातों गुणों से भरपूर सतो प्रधान आत्मा उतरी थी। वो सात गुण कौन से हैं? ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता और शक्ति। ये सात गुणों से भरपूर थे, इसीलिए कहा सतो प्रधान आत्मा वहां से आई थी। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करते करते उसकी पावर डिटोरिएट हो गई, कम हो गई, और आज मानव बिल्कुल खाली की तरह हो गया। इसीलिए छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाता, ये सब खालीपन की निशानियां हैं। थोथा चना बाजे घना, तो ये खालीपन की निशानियां हैं। तो यहां हम जब मेडिटेशन करते हैं, तो यही सात गुण फिर से हमें अपने अंदर भरने हैं, परमात्मा पिता के पास जाना और वहां से वो पावर्स लेना, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इन शक्तियों को, इन गुणों को लाना, ठीक है? हाँ, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करेंगे, अपने सत्य गुणों को अनुभव करेंगे, ठीक है? सभी एक मिनट खड़े हो जाएं, पुनः शांति से बैठ जाएं। वैसे तो ये मेडिटेशन आंख खोल करके हम करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन जो लोग यहां पर प्रथम बार कर रहे हैं, वो अभी आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, या जो भी चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको हो सकता है आंख खोल करके उतना कंसंट्रेशन ना बन पाए, और अगर आप आंख खोल करके करते हैं तो पीछे पॉइंट ऑफ लाइट को देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए सेल्फ को रियलाइज करते हैं। सभी अपना फोन साइलेंट मोड पे कर दीजिए, ताकि किसी को भी कोई डिस्टरबेंस आपकी तरफ से ना हो। विजुलाइज करें, नुआ शाम का समय है, संध्या की वेला है, दिन ढल रहा है, रात्रि अपने आगमन पर आगे बढ़ती जा रही है। आसमान की ओर देखें, सितारे दिखाई देने लग गए,
देखें सितारों को। कोई सितारा कम चमक वाला है, कोई सितारा बहुत चमक वाला है। एक ऐसा ही चमकता हुआ सितारा इस शरीर में, मस्तक के बीच में विराजमान है। वो सितारा मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, लाइट हूं। मस्तक के बीच विराजमान हूं मैं आत्मा, मैं एनर्जी, अजर अमर अविनाशी हूं। एक शक्ति हूं, एक पावर हूं, इस शरीर की मालिक हूं। ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ये आंखें हैं, आंखों के द्वारा देखने वाली कौन? मैं आत्मा हूं। कानों के द्वारा सुनने वाली कौन? मैं आत्मा हूं। मुख द्वारा बोलने वाली कौन? हाथों द्वारा कर्म करने वाली कौन? मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर को, इस कॉस्ट्यूम को धारण करके मैं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले कर रही हूं। जन्म से अब तक मैंने भिन्न भिन्न रोल प्ले किए हैं। घर में अलग, संबंधियों के साथ अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, ऑफिस बिजनेस में अलग, ये रोल प्ले करने वाली मैं एक अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति आत्मा हूं। मेरे अस्तित्व से ये शरीर चलता है। मैं मालिक हूं। मैं यहां सृष्टि रंगमंच पर केवल रोल प्ले करने के लिए आई हूं। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। क्षणों के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाइए, अलग अनुभव कीजिए। ये शरीर यहां इस कुर्सी पर विराजमान, मैं आत्मा, इस शरीर से अलग। चलती हूं अपने घर की ओर, ओरिजिनल घर की ओर। इस हॉल से बाहर खुले आसमान में ऊपर की ओर चमकती हुई ज्योति विजुलाइज करते रहें, ऊपर की ओर जा रही है, धीरे धीरे और ऊपर बादलों के पास पहुंच गई है, और ऊपर नीले आसमान से भी पार। अंतरिक्ष से भी पार पहुंच गई एक लाल सुनहरे प्रकाश के धाम में, जहां चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। दूर दूर तक पूरा ब्रह्मांड लाल सुनहरा प्रकाश, वहां मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान हूं। यहां मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शुद्ध और शक्ति स्वरूप आत्मा थी। ये मेरा ओरिजिनल घर है, जिस घर के लिए मैंने बहुत तपस्याएं की। आज मैं अपने ओरिजिनल घर में बहुत प्रसन्न हूं। इन्हीं गुणों का चिंतन करते हुए उस ज्योति के देश से पुनः नीचे की ओर चमकती हुई ज्योति, चमकता हुआ सितारा नीचे की ओर, नक्षत्रों से नीचे, आसमान से नीचे, बादलों से नीचे, धीरे धीरे और नीचे और नीचे और नीचे, इस हॉल में, इस कुर्सी पर विराजमान, इस देह में, मस्तक के बीच चमकती हुई मणि, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, इस शांति और प्रेम की किरणें मेरे पूरे ब्रेन में, पूरे बॉडी में फैल रही है। मेरा चेहरा एकदम शांत, मेरे फेफड़े एकदम शांति की श्वास ले रहे हैं, मेरा हार्ट एकदम नॉर्मल गति से चल रहा है। बिल्कुल स्वस्थ, अनुभव कर रही हूं। अब मैं इस सृष्टि रंगमंच पर सबके साथ प्रेम शांति और इन्हीं गुणों के साथ सबके साथ व्यवहार करूंगी। ओम शांति, ओम शांति।